पृष्ठ संख्या 68, नाथ द्वारा मेवाड़ का घराना एवं कुछ परंपराएं। पखावज की कला विशेषतः दो स्थानों में पल्लवित हुई, एक राजाश्रयों में तथा दूसरे देवाश्रयों में। राजाओं की भांति मंदिरों में भी पखावज के कलाकारों को सदैव संरक्षण मिला है। भारत के अनेक सुप्रसिद्ध पखावजी वर्षों पर्यंत मंदिरों के सेवक रहे हैं तथा मंदिरों के देवी देवताओं एवं संगीत प्रेमी भक्तों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करते रहे हैं। वैष्णव संप्रदाय में संगीत को बहुत महत्व दिया गया है, अतः नाथ द्वारा के भगवान श्री नाथ जी के धाम के तीन चार सेवक परिवारों में एक गद्दीनसीन पुजारी तथा महंतों की परंपराओं में पखावज की विद्या पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। उन परंपराओं का क्रमशः अवलोकन करते हुए सर्वप्रथम हम पंडित रूप राम जी की परंपरा के इतिहास को देखेंगे, जो मूलतः जयपुर से संबंधित थे। नाथ द्वारा के पंडित रूप राम जी का घराना। जयपुर की पखावज परंपरा का इतिहास सदियों पुराना है। उसके कलाकारों की पीढ़ियों का विस्तार कम से कम 300 वर्षों की लंबी अवधि को पार करता हुआ दिखाई देता है। नाथ द्वारा के पंडित घनश्याम दासकृत मृदंग सागर में इस परंपरा का जो इतिहास उपलब्ध है, उससे यह ज्ञात होता है कि दादाजी तुलसीदास इसके आद्य पुरुष थे। राजस्थान के प्राचीन नगर आमेर में यह परंपरा प्रारंभ हुई, जयपुर में विकसित हुई तथा पिछली 2 सदियों से नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी के मंदिर में विस्तृत एवं बहुश्रुत हुई। यही कारण है कि जयपुर परंपरा आज नाथ द्वारा की परंपरा के नाम से ही प्रसिद्ध है। लगभग लगभग 300 वर्ष पूर्व आमेर में पंडित तुलसीदास के द्वारा जयपुर परंपरा की नींव पड़ी, जो उनके पौत्र हालू जी के समय में विशेष रूप से विकसित हुई। हालू जी अपने समय के अच्छे पखावज वादक थे। उनके नाम से आमेर तथा जयपुर में हालू का की पुल नामक मोहल्ले थे, जो आमेर में तो खंडहर हो चुका है, किंतु जयपुर नगर में हालू का मोहल्ला आज भी इन कलाकारों की प्रसिद्धि एवं महत्व को सिद्ध करता हुआ स्थित है। उनकी इस जागीर में उनके कुछ वंशज आज भी रह रहे हैं। गाने बजाने वाले कलाकारों के मोहल्लों के नाम से यह हालू का मोहल्ला आज भी जयपुर में प्रसिद्ध है। पंडित तुलसीदास के पुत्र पौत्र एवं प्रपौत्रों में सर्वश्री हरभगत, छबीलदास, फकीरदास, हालू जी, छाजू जी, पोखारदास, देवादास, विष्णुदास, चिमना जी, मान जी आदि एक से बढ़कर एक कलाकार हुए, किंतु उनकी 5वीं पीढ़ी के प्रपौत्र पंडित रूप राम जी से इस परंपरा में एक नवीन मोड़ आ गया। उनके पश्चात यह परंपरा जयपुर परंपरा के उपरांत नाथ द्वारा की पखावज परंपरा के नाम से ही विशेष प्रचलित हुई। रूप राम जी के पूर्वजों का विस्तृत इतिहास हमें उपलब्ध नहीं हो सका, केवल उनके नाम ही लिखे मिलते हैं, जो इस परंपरा के वयोवृद्ध वंशज पंडित पुरुषोत्तम दास से उपलब्ध हुए। रूप राम जी के बाद का क्रमानुसार वर्णन हमें घनश्याम कृत मृदंग सागर में मिलता है। पुरुषोत्तम दास जी की व्यक्तिगत भेंट के अवसर पर बहुत सी ऐसी गुप्त बातें हमें प्राप्त हो सकी हैं जो इस परंपरा की विशेषताओं पर प्रकाश डालती हैं तथा उसे दूसरे घरानों से पृथक करती है। आमेर निवासी रूप राम जी जन्म संवत 1791 अर्थात 1735 ईस्वी जयपुर से जोधपुर आ गए और वहाँ के दरबार में नियुक्त हो गए। कहते हैं तांडव नृत्य एवं रामलीला की सैकड़ों पर्ने उन्हें कंठस्थ थीं, जिन्हें वे बड़ी खूबी के साथ बजाते थे। संवत 1856 में संभवतः सन 1803 ईस्वी वयोवृद्ध रूप राम जी तथा उनके युवा पुत्र वल्लभ दास जी नाथ द्वारा के श्री 108 बड़े गिरधारी जी महाराज की आज्ञा से नाथ द्वारा आकर ठाकुर जी की सेवा में लग गए। तब से आज तक उनके घराने की परंपरा नाथ द्वारा की मृदंग परंपरा के नाम से ही देश भर में प्रसिद्ध है। उन दिनों जोधपुर दरबार में अकबर युगीन लाला भगवान दास की परंपरा के उत्तराधिकारी उत्कृष्ट पखावज वादक पहाड़ सिंह जी भी दरबारी कलाकार के पद पर विद्यमान थे। यद्यपि रूप राम जी तथा पहाड़ सिंह जी समकक्ष थे, तथापि रूप राम जी अपने कलाकार मित्र पहाड़ सिंह जी की कला के बड़े प्रशंसक थे तथा उनका बड़ा आदर सम्मान किया करते थे। यही कारण है कि रूप राम जी के पुत्र वल्लभ दास जी की शिक्षा दीक्षा विशेष रूप से पहाड़ सिंह जी के पास संपन्न हुई। वल्लभ दास जी का जन्म संवत 1826 में जोधपुर में हुआ था। बचपन में वल्लभ दास जी ने अपने पिता रूप राम जी से सीखना प्रारंभ किया, किंतु उनकी दीर्घ तालीम श्री पहाड़ सिंह के पास पूर्ण हुई। उन दिनों विद्या प्राप्त करना सरल न था। कहते हैं पहाड़ सिंह जी सिखाने में बड़े कृपण थे। पृष्ठ संख्या 69 वे अपने पुत्र जवाहर सिंह के सिवा किसी को भी उदारता से विद्या नहीं देते थे, किंतु वल्लभ दास जी बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने गुरु पहाड़ सिंह की बहुत सेवा शुश्रूषा करके उन्हें राजी कर लिया था। वल्लभ दास पहाड़ सिंह जी के पुत्र जवाहर सिंह के घनिष्ठ मित्र थे, अतः पिता पुत्र दोनों से रिश्ता रखकर उन्होंने विद्या प्राप्त कर ली थी। संवत 1877 में वल्लभ दास जी ने अपने गुरु पहाड़ सिंह जी को भी नाथ द्वारा बुला लिया। वल्लभ दास जी के 3 पुत्र हुए, सर्वश्री चतुर्भुज, शंकरलाल तथा खेमलाल। चतुर्भुज उदयपुर में रहते थे। शंकरलाल तथा खेमलाल का जन्म क्रमशः संवत 1886 और 1889 में नाथ द्वारा में हुआ था। वे दोनों भाई मृदंग वादक में अत्यंत प्रवीण थे तथा मात्राओं के भेद तथा तालों के विषय में गहरी जानकारी रखते थे। संवत 1906 में वल्लभ दास का देहांत हो गया, तब तक उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को जी खोलकर यह विद्या सिखा दी थी। खेमलाल ने अपने बड़े भाई शंकरलाल से भी बहुत कुछ सीखा था। खेमलाल जी को बड़ी बड़ी तालों का संग्रह करने का बहुत शौक था। तालों में मात्रा भेद के गणित का अभ्यास करने में वे सदैव लगे रहते थे। पृष्ठ संख्या 70। संवत 1911 में जामनगर के गोस्वामी श्री ब्रजनाथ जी महाराज, गोस्वामी श्री द्वारकेश नाथ जी महाराज तथा सौराष्ट्र के सुप्रसिद्ध पखावजी पंडित आदित्य राम जी सौराष्ट्र से नाथ द्वारा आए। कहते हैं कि उन दिनों नाथ द्वारा में गुणी जनों का एक मेला सा रहा करता था, जिसमें उच्च कोटि के गायक, पखावज वादक, पंडित, शास्त्रकार एवं साधु महात्मा बड़ी संख्या में रहते थे। इन सब गुणी जनों में विद्या की चर्चा हुआ करती थी। जिनमें शंकरलाल, खेमलाल और आदित्य राम के बीच हुए ताल विषयक शास्त्र संवाद महत्वपूर्ण थे। श्री खेमलाल जी ने इन्हीं चर्चाओं में अपने जिन मतों का समर्थन पाया उनके आधार पर मृदंग सागर नामक पुस्तक की रचना में लग गए। मृदंग सागर में बड़ी बड़ी तालों के चक्र मात्रा भेद सहित संग्रहित हैं। इनमें से बहुतों को उन्होंने पुराने ग्रंथों से प्राप्त किया था और कुछ उनकी अपनी नवीन रचनाएं थीं। इस पुस्तक की रचना में खेमलाल को अपने ज्येष्ठ पुत्र श्यामलाल से काफ़ी सहयोग मिला। वे बोलते थे और उनके पुत्र उसे लिपिबद्ध किया करते थे। खेमलाल के दूसरे पुत्र का नाम रघुनाथ था। श्यामलाल को भी एक पुत्र था जिसका नाम विट्ठल था। जिन दिनों खेमलाल नाथ द्वारा में पुस्तक रचना में तल्लीन थे, उनके बड़े भाई शंकरलाल अपनी कला प्रदर्शन के लिए राजा महाराजाओं के दरबारों में घूमा करते थे। जयपुर, जोधपुर, बड़ौदा, उदयपुर, डूंगरपुर आदि अनेक राज दरबारों में यश, धन, कीर्ति कमाकर जब वे नाथ द्वारा वापस लौट रहे थे कि रास्ते में अचानक उनका शरीर रोगग्रस्त हो गया। जैसे तैसे वे नाथ द्वारा पहुँचे, पहुँचते ही दुर्भाग्यवश उनके परिवार में एक ऐसी करुण घटना घटी कि उससे उनको गहरा धक्का लगा। संवत 1934 में उनके छोटे भाई खेमलाल की अचानक एवं असामयिक मृत्यु हो गई। उनके पुत्र श्यामलाल को अपने पिता के निधन से ऐसा सदमा पहुंचा कि उनका भी तुरंत निधन हो गया। शंकरलाल जी अपने अनुज खेमलाल को बहुत प्यार करते थे। वे बीमार तो थे ही, अचानक अपने प्रिय भाई खेमलाल एवं भतीजे श्यामलाल के निधन से उनको गहरा सदमा पहुंचा। परिणाम स्वरूप उनका चित्त भ्रमित हो गया। इस तरह मृदंग सागर की रचना अधूरी रह गई। उन दिनों शंकरलाल के पुत्र घनश्याम दास की अवस्था 9 वर्ष की थी। उनका जन्म संवत 1926 में नाथ द्वारा में हुआ। अत्यंत अल्प आयु में ही घनश्याम दास की मृदंग शिक्षा पिता एवं चाचा के निर्देशन में प्रारंभ हो गई थी। परंतु अचानक चाचा का निधन एवं पिता का चित्त भ्रम हो जाने के कारण उस छोटे से बालक की प्रगति अवरुद्ध हो गई। पिताजी को लेकर घनश्याम दास अनेक तीर्थ धाम घूमे। इस यात्रा के दौरान उन्हें अनेक गुणीजनों का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप घनश्याम दास को काफ़ी ज्ञान लाभ हुआ। 7 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करने के पश्चात जब वे नाथ द्वारा पहुँचे, तब तक उनके पिताजी की दिमागी हालत ठीक हो गई थी। अतः शंकरलाल जी ने पुनः अपने पुत्र को शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। पृष्ठ संख्या 71। संवत 1950 में शंकरलाल का अवसान हुआ। पिता के स्थान पर घनश्याम दास जी को श्रीनाथ जी की सेवा का अवसर मिला। इस प्रकार वे ईश्वर के दरबार में नित्य अपनी कला का प्रदर्शन करते रहे और अनेक राज दरबारों में भ्रमण कर धन यश और कीर्ति भी अर्जित की। चाचा खेमलाल जी की पुस्तक मृदंग सागर अधूरी रह गई थी। इसका घनश्याम दास जी को बहुत खेद था। अतः अवसर मिलते ही उन्होंने इस कार्य को उठा लिया तथा अपने पूर्वजों के ज्ञान और विद्या के आधार पर अपने चाचा खेमलाल जी की अधूरी पुस्तक पूर्ण की। 20वीं सदी के प्रारंभ में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ, जिसमें अनेक तालों की जानकारी तथा चक्रदार, परने, रेले आदि लिखे गए थे। पंडित पुरुषोत्तम दास घनश्याम दास के अनुज तथा इस परंपरा के अंतिम वयोवृद्ध वंशज थे। वे देश के उच्च कोटि के पखावज वादकों में से एक माने जाते थे। 5 वर्ष की अल्प आयु में हाथ से ताल देकर बोलों को पढ़ने की शिक्षा उनके पिता श्री घनश्याम दास के द्वारा प्रारंभ हुई। पिताजी जब मंदिर जाते थे तो छोटे से पुरुषोत्तम दास को अपने साथ ले जाते थे और घर में अक्षरों के निकास की प्रारंभिक तालीम देकर उनमें कला संस्कार का सिंचन करते थे। पुरुषोत्तम दास जब 9 वर्ष के थे तभी दुर्भाग्य से उनके पिता का देहांत हो गया और उस निराधार बालक के कमजोर कंधों पर अपनी परंपरा को निभाने की गंभीर जिम्मेदारी आ पड़ी। इस छोटे से बालक ने इस कठोर जिम्मेदारी को किस प्रकार निभाया तथा अपनी कला साधना को अविरत रखा, इसकी कहानी काफ़ी लंबी और दर्द भरी है, किंतु पुरुषोत्तम दास इस कठिन परीक्षा में पूर्णतः सफल हुए। उनका नाम आज भारत के उत्कृष्ट पखावजियों में गिना जाता है। यह उनकी योग्यता तथा कठिन साधना का प्रमाण है। अपने पूर्वजों के कदम पर चलकर अपने पिता के स्थान पर नाथ द्वारा के मंदिर में वे वर्षों तक सेवा में रहे। तत्पश्चात दिल्ली के भारतीय कला केंद्र में आ गए और बाद में दिल्ली के ही कथक केंद्र में गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होकर रहे। उन्होंने अपना शेष जीवन नाथ द्वारा में व्यतीत किया और वहीं उनका देहांत हुआ। उनको कोई पुत्र नहीं था। उनके प्रमुख शिष्यों में उनके नाती प्रकाश चंद्र, दोनों भांजे रामकृष्ण एवं श्यामलाल नाथ द्वारा, तेज प्रकाश तुलसी, दुर्गालाल कथक, महाराज छत्रपति सिंह बिजना, रामलखन यादव, भागवत उपरेती, हरिकृष्ण बहेरा, तोताराम शर्मा, मुरलीधर गुरव, गौरांग चौधरी, भीमसेन, मदनलाल आदि कलाकारों के नाम उल्लेखनीय है। नाथ द्वारा के पंडित रूप राम घराने की वादन विशेषताएं। इस घराने की वादन शैली नाना पानसे घराने की शैली से पृथक है, किंतु कुदव सिंह घराने की शैली से कुछ मिलती जुलती है। दूसरा, इस वादन शैली में विशेषतः तीट से अधिक किट अथवा कीटी का प्रयोग होता है। धा किट तक, ता किट तक, धिन तीट किट तकता, किट तक थुन थुन, क्रधित तीट धा, तक किट धाधीनता आदि बोल समूहों का प्रयोग बराबर होता रहता है। तीसरा, बाएं पर ता और दाएं पर का बजाने की प्रथा भी यहाँ देखने को मिलती है। पृष्ठ संख्या 72, जो परंपरागत शैली के विपरीत जान पड़ती है। ता दिन थुन ना किट तक गदिगन धा, इस प्रकार मुख्य अक्षरों द्वारा प्रारंभिक अभ्यास के लिए एक छोटी सी परन है जो इस प्रकार है। पृष्ठ संख्या 73, वादन में धिननक का प्रयोग इस घराने की विशेषता है। पंडित पुरुषोत्तम दास जी के अनुसार इस घराने में अन्य घरानों की अपेक्षा धिननक का अधिक प्रयोग होता है। संख्या 74, नाथ द्वारा मेवाड़ की रणछोड़ दास की वंश परंपरा। श्री रणछोड़ दास की चौथी पीढ़ी के प्रपौत्र नाथ द्वारा निवासी श्री मूलचंद जी उनके श्री मुख से इस घराने के इतिहास को सुनने का अवसर मिला है, जो कुछ इस प्रकार है। मूलचंद के प्रपितामह रणछोड़ दास जी वृंदावन के निवासी थे तथा वहां से नाथ द्वारा आकर श्री नाथ जी की सेवा में रत हुए थे। वे मृदंग के अतिरिक्त सितार वादन में भी अत्यंत दक्ष थे। उनके पुत्र देव किशन जी पिता से ही सीखकर अच्छे कलाकार सिद्ध हुए। वे आजीवन ठाकुर जी की सेवा में रहे। देव किशन के पुत्र परमानंद अपने दादा की तरह बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार थे। उन्हें गायन, सितार, बीन तथा मृदंग वादन पर समानाधिकार था। वे भी श्री नाथ जी की सेवा में रहे। उनके 4 पुत्र हुए। 2 गायक हैं जो नाथ द्वारा में ही रह रहे हैं। रतनलाल नामक एक पुत्र भीलवाड़ा चले गए और एक मूलचंद्र जी नाथ द्वारा में मृदंग वादक के रूप में प्रसिद्ध थे। वे आजीवन ठाकुर जी की सेवा में निष्ठापूर्वक अर्पित थे तथा मंदिर द्वारा श्री संचालित एक संगीत विद्यालय में पखावज और तबला वादन की शिक्षा दे रहे थे। नाथ द्वारा के विठल दास के मंदिर के मठाधीशों की वंश परंपरा। नाथ द्वारा में विठल नाथ जी के मंदिर के मठाधीशों की वंश परंपरा में कला के संस्कार तथा गायन वादन की शास्त्रोक्त शिक्षा चली आ रही है। श्री वल्लभ संप्रदाय याचार्य पीठाधीश्वर गोस्वामी श्री गोविंद दास जी महाराज को सितार तथा पखावज का अच्छा ज्ञान था। उनके सुपुत्र गोस्वामी श्री देवकी नंदन जी महाराज पखावज के अच्छे ज्ञाता थे। उनके पुत्र गोस्वामी श्री कृष्ण राय जी महाराज पखावज तथा तंतुवादन में दक्ष थे। उनके सुपुत्र गोस्वामी श्री गिरधर लाल जी महाराज ने भी अपने पिता के संगीत संस्कार एवं ज्ञान गरिमा को वंश परंपरागत प्राप्त किया था। पृष्ठ संख्या 75। आज नाथ द्वारा में गोस्वामी श्री गिरधर लाल जी महाराज के पुत्र गोस्वामी श्री कल्याण राय जी महाराज गद्दी पर विराजमान हैं। उनके दो छोटे भाई गोस्वामी श्री गोकुलोत्सव जी महाराज तथा गोस्वामी श्री देवकी नंदन जी महाराज सहित तीनों भाई पखावज वादन में अत्यंत निपुण हैं। छोटी उम्र में इन तीनों प्रतिभावंत महाराजों ने दीनानाथ कीर्तनकार चुन्नीलाल पवार शिव नारायण गोविंद भाऊ राजवैद्य इंदौर तथा कृष्ण दास बनात वाला बुरहानपुर से शिक्षा प्राप्त करके अपनी वंश परंपरा के संगीत संस्कार को उज्ज्वल किया है। वे पानसे घराने के शिष्य हैं और उसी घराने का बाज बजाते हैं। पखावज के अतिरिक्त वे ध्रुपद एवं धमार गायकी का भी ज्ञान रखते हैं। उन्होंने अपनी बंदिशों को लिपिबद्ध करके पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया है। सौराष्ट्र की वैष्णव परंपरा। पोरबंदर सौराष्ट्र के गोस्वामी घनश्याम लाल और उनके पुत्र गोस्वामी द्वारकेश लाल हवेली संगीतकारों के रूप में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आज से 50 वर्ष पहले भारत के कलाकार पोरबंदर को कला का तीर्थ धाम मानते थे। गोस्वामी घनश्याम लाल जी तथा गोस्वामी द्वारकेश लाल जी की अच्छे कलाकारों एवं संगीत प्रेमियों के रूप में प्रतिष्ठा थी। हवेली संगीत के उन वैष्णव कलाकारों ने आज भी ध्रुपद गायकी एवं पखावज वादन को जीवित रखने का भगीरथ प्रयास किया है। गोस्वामी द्वारकेश लाल जी हारमोनियम वादन के अतिरिक्त मृदंग और तबला वादन में प्रवीण थे। उनके बड़े भाई गोस्वामी दामोदर लाल जी ने भी पखावज वादन में दक्षता प्राप्त किया था। आज भी पोरबंदर में गोस्वामी द्वारकेश लाल जी के दो पुत्र गोस्वामी माधवराव और गोस्वामी रसिक राय ने अपने वंश की परंपरा जीवित रखी है। दतिया के ब्रज मंडल में के मंदिरों में के समाजी कलाकार। दतिया के ब्रज मंडल के मंदिरों के समाजी कलाकार। दतिया के ब्रज मंडल के मंदिरों में विक्रम की 17वीं शताब्दी के बाद समाज गायन को प्रधानता मिलनी प्रारंभ हो गई थी। दतिया के बुंदेला राजाओं ने इसे ब्रज जैसा धार्मिक केंद्र बनाने के हेतु उसमें विशाल वैष्णव मंदिरों का निर्माण किया तथा वृंदावन की पूजा पद्धति के अनुसार वहां समाज का गठन किया। पृष्ठ संख्या 67। समाजी लोग देव मंदिरों में भक्ति प्रधान पदों को सामूहिक रूप से गाकर प्रभु भक्ति का पवित्र वातावरण उत्पन्न करते हैं। उनके गायन का प्रायोजन राजाश्रय या द्रव्योपार्जन नहीं होता, उनका गायन प्रायः ध्रुपद ही होता है। अतः सामाजिक वर्ग में भी अच्छे संगीतज्ञ तथा मृदंगाचार्य हुए हैं, जिनमें गत पीढ़ी के कलाकारों में कुदव सिंह के शिष्य खिल्ली नागार्च, गबदे दुबे, राधा गोविंद नागार्च, गोपीनाथ गोस्वामी, मुन्नालाल नागार्च आदि तथा आधुनिक पीढ़ी के कलाकारों में राधा गोविंद नागार्च के दो पुत्र मदन मोहन तथा राधा मोहन नागार्च, भगवान दास राणा, हर प्रसाद अवस्थी, किशोरी शरण मिश्र, सोनाराम भट्ट, सिया शरण भट्ट, भगवान दास भट्ट आदि प्रमुख हैं। इस प्रकार दतिया में मृदंग वादन की परंपरा में राजाश्रित कलाकारों की भांति ही वैष्णव समाजियों का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है। इस पुस्तक के 5वें अध्याय में ब्रज की वैष्णव परंपरा की विस्तृत चर्चा की जा चुकी है, अतः उसकी पुनरावृत्ति यहाँ आवश्यक है। राजस्थान की वैष्णव परंपरा। राजस्थान के वैष्णव मंदिरों के गोस्वामियों की वंश परंपराओं में संगीत कला के संस्कार एवं उनकी विधिवत शिक्षा हमेशा देखी गई है। बीकानेर की वैष्णव परंपरा के गोस्वामी गोविंद लाल जी ने मृदंग वादन की शिक्षा जामनगर के बलदेव शाह घराने के दरबारी कलाकार पंडित आदित्य राम जी से एवं उनके शिष्य लाला जी से प्राप्त की थी। कहते हैं कि गोस्वामी गोविंद लाल ने कुदव सिंह घराने के पंडित भोलानाथ पाठक से भी सीखा था। वे उच्च कोटि के मृदंग वादक थे। गोस्वामी गोविंद लाल जी के शिष्यों में श्री जयकरण का नाम उल्लेखनीय है। तदुपरांत बीकानेर के वैष्णव संप्रदाय के गोस्वामी वल्लभ जी ने भी कुदव सिंह घराने के पंडित मदन मोहन उपाध्याय और उनके शिष्य पंडित रामदेव पाठक से मृदंग वादन की विधिवत शिक्षा ली थी। पखावज वादन में गोस्वामी वल्लभ दास जी का हाथ बहुत सुरीला था और वे अत्यंत मधुर पखावज बजाया करते थे। उनके शिष्यों में शिवजी श्री माली का नाम प्रमुख है। बीकानेर के रतन बिहारी मंदिर में पंडित अन्नू जी नाम के एक अच्छे मृदंगाचार्य वर्षों तक सेवारत रहे। उनका देहावसान 1920 के लगभग हुआ।